نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 12 پارے کا آخری رب کریں گے سورة یوسف کی آیت نمبر 19 ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. اور آیا ایک قافلہ اس کے پاس, پس انہوں نے اپنے آگے بھیجا ایک شخص کو اور اس نے اپنا ڈول لٹکایا, اور اس نے ڈول لٹکانے کے بعد جب اس میں ایک لڑکے کو دیکھا تو کہنے لگا ہائے خوشخبری, یہ تو ایک بچہ ہے. پس اس کو چھپا دیا ایک قیمتی جمع پونجی سمجھ کر, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ ہم پچھلے رب میں دیکھ چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے اور باپ کی محبت سے نکال دیے گئے چھوٹ کے ساتھ, دھوکے کے ساتھ. لیکن اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا حالات تیار کرتا ہے. یہاں سے زندگی کے کچھ معاملات کی اصل بھی سمجھ لیجئے. ہمارے ہاں ایک شعر میں بھی کہا کرتے ہیں نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے مگر کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بھائیوں نے کیا چاہا کہ ان کو ختم کر دیں, الگ کر دیں, ہمارے راستے سے ہٹ جائیں, لیکن وہی یوسف جو تھے وہ وہاں سے کامیابیوں کی ایک ایسی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے باپ کی گود میں رہتے ہوئے. بعض دفعہ انسان حالات کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ نہیں پاتا, یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, میں نے تو کوئی برا نہیں سوچا, میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا. یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہم نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے, لیکن ہم بھولے بہت ہوتے ہیں, ہمیں اپنی برائیاں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن یاد رکھیے کہ جب کوئی وجہ نہ سمجھ آئے تو اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اس کے پیچھے کو خیر لائے گا. پورا قصہ یوسف جو ہے نا شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر کی کہانی ہے. محبتوں کے مارے ہوئے انسان اور نفرتوں سے دھتکارے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جب کچھ دینا چاہتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں نعمت زیادہ ہوتی ہے وہاں حاسد بھی زیادہ ہوتے ہیں. کل ذی نعمت محسود کے لفظ آتے ہیں حدیث میں, کچھ اسی طرح مفہوم ہے اس کا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سے اگر کوئی نعمت مانگے تو ساتھ یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ اس نعمت کی آزمائش سے محفوظ رکھنا. اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکال کر اب ایک ایسی جگہ بھیج دیے گئے کہ جہاں کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. اور ایسی باتیں بعض دفعہ زندگی میں ناقابل برداشت ہوتی ہیں, لیکن اگر انسان اگلا صفحہ پلٹ کر دیکھے تو وہاں سے بہت ساری خیر ہوتی ہے. ہم یہاں سے دیکھتے ہیں دوبارہ, وجاءت سيارة فارسلوا واردهم, ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے پانی لانے والے کو آگے بھیجا. اس نے کنویں میں جو ڈول دیکھا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو, یہ تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا, اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. یہاں بڑا خوبصورت نقطہ ہے, محبتوں سے پلے ہوئے بچے, اتنا خوبصورت خواب دیکھا ہوا بچہ, باپ کی آنکھوں کا تارا, لیکن وشروح بثمن بخس. زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری صحیح قیمت نہیں لگاتے. ماں باپ کے گھر کی لاڈلی بچی بے قدرے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے, وہ اس کی قدر نہیں کرتے. اور جس چیز کی انسان قدر نہیں کرتا وہ اس کے معاملے میں واقعی زاہدین میں سے ہوتا ہے, کوئی اس کو اچھی امید نہیں ہوتی. اور انہوں نے اس کو اپنی جان چھڑانے کے لیے مال مفت دل بے رحم کر دیا. کبھی بھی کوئی بے قیمت کیا جائے نا تو یوسف کو یاد کر لے کہ اتنا قیمتی بچہ اتنی تھوڑی قیمت میں بک گیا. خریدا کس نے؟ وقال الذی اشتراہ من مصر لامراته, مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. یہ مصر کا وزیر خزانہ تھا, بادشاہ کا کرتا دھرتا تھا, مال اسباب اسی کے ہاتھ میں تھے, کہتے ہیں کہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا. اس نے حضرت یوسف کو پہچانا اور بیوی کو کہا کہ دیکھو تم اس کو اچھی طرح رکھنا. لیکن اصل میں یہ اس نے نہیں کیا بلکہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کہاں لے جانا ہے، وہاں سے کیا خیر کرنی ہے، لینی ہے، دینی ہے۔ یوسف تو اس ملک میں جانے کا سوچ نہیں سکتے تھے، ٹکٹ نہ ہوتا یوسف کے پاس مصر جانے کا، لیکن اللہ کیسے ہواؤں کے دوش پہ لے جاتا ہے جب اللہ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں۔ اور وہاں جا کے پھر یوسف کی وہ تربیت شروع ہوئی جو کنعان جیسے گاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے اس کو معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، اور اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اللہ کی حکمتوں کو لوگ نہیں جانتے۔ پھر وہیں یوسف پلے بڑھے، اور اس کے بعد وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اب جہاں محبت ملی، حسن ملا، یوسف بہت خوبصورت لڑکے ثابت ہوئے، تو وہیں آزمائش آ گئی، اور آزمائش باہر نہیں آتی، آزمائش گھر سے آتی ہے۔ وَرَاوَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا، یعنی اس کو دعوت گناہ دی۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے بہت اچھی جگہ دی اور میں یہ کام کروں، یعنی رب سے مراد یہاں اللہ کا ڈر بھی ہے، اور اس شوہر کی نمک حرامی کروں جس نے مجھے اتنی محبت سے رکھا، یعنی تیرے شوہر کی نافرمانی کروں۔ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، یہ یوسف کو کس نے سکھایا، کس مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے؟ یہ باپ کی اس بچپن کی چند سال کی تربیت کا اثر تھا جو بچے کی گھٹی میں ڈال دیا تھا 7-8 سال کی عمر کا ہونے پہ۔ پردیس میں چلے گئے، خوبصورت عورت ڈورے ڈالنے لگ گئی، مجبور کر سکتی تھی، لیکن بچپن کی خوبصورت تربیت جوانی تک رہتی ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ نیک ماں کا دودھ پیاؤ تو بچے غلط چیزوں کی طرف نہیں جاتے۔ آج جب ماؤں کی بجائے جانوروں کے دودھ بچوں کو پلا دیے گئے تو یہ بات بھی چلی گئی، لیکن یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بچ گئے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھ جاتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کریں، حقیقت میں وہ من عبادنا المخلصین، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اب ذرا سوچئے ایک مرد کے لیے کتنے اسباب موجود تھے گناہ کے، مجبور بھی تھا، عورت پہل کر رہی تھی، گھر میں اکیلے تھے، لیکن اندر کی دیواریں جب مضبوط ہوتی ہیں اور تقوی دل میں ہوتا ہے تو پھر ایسی دعوت گناہ پہ انسان مجبور سمجھ کے مزہ نہیں لے رہا ہوتا بلکہ پورے دفاع کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں ہی دروازے کی طرف بھاگے، کیسے؟ یوسف جان چھڑانے کے لیے اور عورت ان کو پکڑنے کے لیے۔ یوسف آگے تھے، وہ عورت پیچھے تھی، اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیض کھینچ کر پھاڑ دی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا، اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، اب دیکھیے کیسے پینترا بدلتی ہے، اور حقیقت ہے کہ نفس پرستی پہ مبنی محبتیں اسی طرح رنگ بدلتی ہیں، کہ ایسی بازاری عورتوں کی طرح کی باتیں کرنے والیاں شوہر کو دیکھ کر اسی یوسف کے اوپر اب الزام دھرتے ہوئے کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری عورت پر نیت خراب کرے، یعنی جو تیری بیوی پر نظر ڈالے، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا سخت سزا دیا جائے؟ یہاں سے دیکھیے کہ کیسے وقتی بات تھی جو بدل گئی۔ اب یوسف خاموش نہیں رہے، اور یہی حکم ہے، آپ کی عزت پہ حرف آئے تو اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ یوسف نے جواب دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب یوسف بولے لیکن ان کی گواہی کون دے گا؟ اللہ نے دلوائی، کیونکہ اللہ کی ذات ایسے اسباب پیدا کر دیتی ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے گواہی دلوائی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گھر ہی میں سے ایک شخص نے گواہی دی، اس عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی، کون تھا واللہ عالم، لیکن اللہ سچے لوگوں کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ گواہی میں اس نے سبق کیا بتایا؟ کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے، یعنی عورت دفاع کر رہی تھی، और ये झूठा है, और अगर इसका कमीज़ पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है और ये सच्चा है। जब शौहर ने देखा कि यूसुफ का कमीज़ तो पीछे से फटा है तो इसने कहा, ये तुम औरतों की चल्लाकियाँ हैं, वाकई बड़े गज़ब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ आरिदन हाजा, यूसुफ इस मामले में अब दरगुजर कर, ये है इसकी दयूसियत। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मर्द अपनी बीवी में बुराई देखे और उस पर कोई एक्शन ना ले, वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा हालांकि वो कई मील से आ रही होगी। शख्स को दयूस कहते हैं। आज ताल्लुकात के नाम पे और न जाने किस नामों पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, शोहर बीवी और बीवियां शोहरों के इन मामलात को जानते बूझते कोई एक्शन ना ले तो सोचने की मुकाम है। और फिर अपनी बीवी से कहने लगा, वस्तग़फ़िरी ली ज़म्बिक, ए औरत तो अपने कसूर की माफ़ी मांग ले, तू ही असल में ख़ताकार थी। बस हल्की सी डांट दी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया और कह दिया बस खामोश हो। यूसुफ को पीछे कर दिया कि बोलो नहीं, लेकिन ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। वक़ाल नस्फ़तुम फ़िल मदीनति इमरातुल अज़ीज़ तुरावीदु फ़ताहा अन नफ़्सिही, बातें फैलने लगीं, शहर की औरतें चर्चा करने लगीं कि अज़ीज़ की बीवी अपने नौजवान ग़ुलाम के पीछे पड़ी हुई है और मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर रखा है। हमारे नज़दीक तो वो बिल्कुल गुमराही में है। इसने जो इनकी मक्काराना बातें सुनी तो इनको बुलावा भेजा और इनके लिए तकियेदार मजलिस आरास्ता की और मेहमानी में उनके सामने एक एक छुरी रख दी। फिर ऐन इस वक्त जबकि वो फल काट काट कर खा रही थी, इसने यूसुफ को इशारा किया कि इनके सामने निकला। जब इन औरतों की निगाह इस पर पड़ी तो वो दंग रह गईं और अपने हाथ काट डाले, यानी कि उंगलियां काटी, हाथ ही काट दिए, और बेसाख्ता पुकार उठी, हाशलिल्ला, ये शख्स इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग करीम फरिश्ता है। قالت فذلك الذي لمتنني فيه, अब देखिए ढिटाई देखिए, ऐसी चीज़ें करने और ऐसे बातों से हया ख़त्म हो चुकी होती है, बजाय इसके कि शर्मसार होती और मौका देकर लोहा नरम देखकर वो औरत बोली, देख लिया ना, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। बेशक मैंने इसको रिझाने की बड़ी कोशिश की थी मगर ये साफ बच निकला। इससे लग रहा है कि गुनाह की कोई शर्मिंदगी नहीं है, और अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलीलो ख्वार होगा। अब दोबारा धमकी है कैद की। अब यूसुफ बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए एक दुआ मांगते हैं, और वो क्या, यूसुफ ने कहा है, मेरे रब, रब सजन अहब इलैया मिम्मा यदउननी इलैह, ए मेरे रब, मेरे लिए कैद खाना बेहतर है उस चीज़ से जिसकी दावत ये औरतें मुझको दे रही हैं, और अगर तू मुझसे इनका मकर दूर ना करेगा तो मैं इनकी तरफ झुक जाऊंगा और बेशक मैं जाहलों में हो जाऊंगा। इसको हाईलाइट कर ले, कितने मर्द हैं जो ऐसे पुरकशिश माहौल में रहने से तन्हाई में रहना और क़ैद में रहना पसंद कर ले। जिसको लोग ग्लैमर कहते हैं, नेक लोग उसको फितना कहते हैं, और ये है वो तरबियत जो नबियों ने अपने बेटों की बचपन में की होती हैं कि उसका असर उनके पास होता है। हदीस के मुताबिक के सात लोग अरशे इलाही के साए में होंगे, उनमें से एक वो मर्द जिसको आला रुतबे वाली औरत बुराई के लिए बुराए और वो उस वक़्त उसकी उस बात में से पीछे हो जाए अल्लाह का हुक्म समझते हुए, अल्लाह के खौफ से। इसीलिए हज़रत यूसुफ के बारे में ये प्रिडिक्शन की जा सकती है कि वो क़्यामत के दिन अरशे इलाही के साए में होंगे। दुआ दिल से मांगी थी, फस्तजाब लहू रब्बुहू, तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और इन औरतों की चालें उससे दफ़ा कर दीं। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। फिर इन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए इसे कैद कर दें, हालांकि उसकी पाक दामनी और ख़ुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरीख निशानियाँ देख चुके थे, यानी अब यूसुफ कैद कर दिए गए। यहाँ देखिए कि बेगुनाह शख्स कैद हो रहा है, पता था शौहर को कि कसूर बीवी गए, लेकिन अथॉरिटी का असर और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बाज़ दफ़ा इस तरह के काम भी कर दिए जाते हैं। अगर हम सिर्फ इन बातों को सामने रखते हुए आज के कल्चर पे गौर करें तो औरतें ख़ुद गुनाह की दावत देती हुई जिन माशरों में दिखें, फिर वहाँ कौन बचेगा, किस कैद में अब बंद करेंगे, निकाह की कैद में, छोटी उम्र में बच्चों की शादियाँ, बचपन में उनकी अच्छी तरबियत, उनकी सोच का तस्किया। बचपन में बच्चों के हाथों में वो मशीनें आप पकड़ा देते हैं कि जिसमें वो जो गन देख सकते हैं देख लें, कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता। अगर हकीकत में अपने बच्चों की जवानी को खूबसूरत देखना ना तो उनके बचपन को खूबसूरत करिए। अगर आप बच्चियों की इज्जत और उनकी हया और उनके अंदर इस किस्म के जज्बे पैदा करना चाहते हैं बड़े होकर कि वो हज़रत खदीजा और आयशा जैसी बने, तो उनका बचपन ऐसा रखिए कि हकीकत में उस वक़्त उनके दिलों में ऐसा कोई ख्याल ना आए। यही बात हमें हज़रत यूसुफ़ के यहाँ तक किस्से की दिखती है। इसके बाद अब यूसुफ़ की ज़िंदगी का एक और दौर है। अभी तक कितने दौर गुजरे, बाप की गोद मोहब्बत से निकले तो कुएं में पहुँच गए। अब ये बहुत खूबसूरत दौर के बाद एक बुरा दौर था। फिर सब्र किया तो वहाँ से निकले तो अजीज़ो मिस्र के घर में गए, बेटा बना के रखे गए, ये अच्छा दौर था। उसी के अंदर से एक शर निकला तो ट्रैप हुए, तो ये फिर फितने का दौर हो गया। फिर बात गई आई हुई, फिर दोबारा कुछ दिन गुजरे तो अब कैद में पहुँच गए। इतने अरूज और सवाल, इतनी ज़िंदगी में चेंजेस आती हैं। और आप असल में यूसुफ़ को अल्लाह ताला अपने काम का बना रहे हैं। कैसे? वदहला माहु सिजन फतयान, कैद खाने में दो ग़ुलाम और भी इसके साथ दाखिल हुए। एक रोज़ इनमें से एक ने उससे कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियाँ रखी हैं और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। ये किसने कहा उनको? यूसुफ़ के रवैये ने। पूरी सूरत में आप देख रहे हैं कि मुहसिनीन का लक़ब यूसुफ़ को मिलता जा रहा है, आगे जाके तो बहुत ही मिलेगा। इससे पता चलता है कि दुश्मन आपको कैद खाने में क्यों ना डाल दे, आपका आला अखलाक खुल के रहेगा। अब उन्होंने ख्वाब देखा, दोनों जो थे बादशाह को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार थे, दोनों के ख्वाब को अल्लाह ताला ने एक बिल्कुल ऐसी सच्चाई बना के पेश किया। तो यूसुफ़ की इल्म की शोहरत फैल चुकी थी, यहाँ इनको नबूवत के आसार शुरू हो चुके थे। ये जहन में रखिएगा कि यूसुफ़ को नबूवत जो मिली थी वो इसी कैद खाने के दौरान मिली, और इसके दौरान अल्लाह ताला ने इनको तबलीग का और अपनी बात करने का हुक्म दिया। पहले तो कुछ ना कहा, लेकिन जब उनको ज़रूरत पेश आई तो यूसुफ़ के पास आ गए। अब यूसुफ़ ने फ़ौरन ताबीर नहीं दी, बल्कि قال لا ياتيكما طعام ترزقانيه الا نبتكما بتاويله, यहाँ जो खाना तुमको मिलता है इसके आने से पहले तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये इल्म इन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। वाकया ये है कि मैंने इन लोगों का तरीका छोड़कर, ये नोट करने की बात है, उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखरत का इनकार करते हैं, अपने बुज़ुर्गों इब्राहिम इसहाक़ और याकूब का तरीक़ा इख्तियार किया है। पहले तरीके छोड़ने पड़ते हैं, फिर ही अल्लाह ताला खैर के तरीके देता है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। दर हकीकत ये अल्लाह का फ़ज़ल है हम पर और तमाम इंसानों पर कि इसके सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनना, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ मेरे क़ैद के साथियों, तुम खुद ही सोचो। यहाँ देखिए पहले तबलीग की, इसमें बड़ी खूबसूरत डिटेल में बात कर चुके हैं। सबीलुल जन्ना में डिटेल सुनना चाहें तो सिर्फ हज़रत यूसुफ़ के इस छोटे से मुकालमे से तबलीग के कितने नुक्ते दिखते हैं कि पहले अगले की ज़रूरत थी तो फिर बात की, और सबसे पहली चीज़ तौहीद की शुरू की। आते ही सूद का मसला नहीं शुरू कर दिया और शराब की बात नहीं की, हालाँकि वो शराब पिलाने के जुर्म में था, लेकिन तौहीद असल चीज़ है। लेकिन खुद ही कहा कि अक्सर लोग जो हैं ला यशकुरून, या साहिबा, ये लफ्ज़ भी नोट कीजिएगा, ऐ मेरी क़ैद के साथियों, प्यार से बुला रहे, गैर मुस्लिम है, इल्ज़ाम लगा हुआ है, कातिल है इनमें से कोई एक, लेकिन मोहसिन जो होता है वो अपना अखलाक ख़राब नहीं करते, और अब सोचने की दावत दे रहे हैं। तुम खुद ही सोचो कि क्या बहुत सारे मुतफरिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। इसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं, बस चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे आबा अजदाद ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनत नहीं उतारी, क्योंकि हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है। इसका हुक्म है खुद इसके सिवा कि तुम किसी की बंदगी ना करो, यही सही तरीका है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। आप नोट करें, अक्सर 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 शुक्र नहीं करते, अक्सर काफिर हैं, अक्सर आखरत को नहीं मानते, तो फिर मेजॉरिटी के पीछे नहीं चलना। ए कैद के साथियों, तुम्हारे अब ख्वाब की ताबीर है, थोड़ी सी बात करके अब फौरन उनकी बात पूरी कर रहे हैं कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यह है कि तुम में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो इसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया इस बात का जो तुम पूछ रहे थे। यहाँ देखिए कि नाम नहीं लिया, हालांकि ख्वाब से साफ पता चल रहा है कि जिसके सर पर रोटियाँ थी और परिंदे खा रहे थे वो नान भाई था, उसको सज़ा मिलनी है। लेकिन इनडायरेक्ट बात की, ये भी खूबसूरत अंदाज होता है कि किसी को बिल्कुल लट डाउन नहीं करना कि आप तुम तो मरी जाओगे। है फिर उसके बाद क्या हुआ? वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिन्हुमा, फिर इनमें से जिसके मुतालिक ख्याल था कि वो रहा हो जाएगा, इससे यूसुफ ने कहा कि अपने रब यानी शाह मिस्र से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने इसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने रब से इसका जिक्र करना भूल गया और यूसुफ कई साल तक कैद खाने में रहा। जितनी मर्जी दुआएं करा लें आप दूसरों से, आपकी मुश्किल तब दूर होगी जब अल्लाह चाहेगा। बुलवा दिया, काम एक मिनट में होता है लेकिन वो एक मिनट ही आप नहीं कर सके। तो पता क्या चला कि जितने मर्जी असबाब इख्तियार कर लीजिए, जब अल्लाह ने वो गम दूर करना है, बीमारी दूर करनी है, तभी होगी। इसलिए अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह मेरे मसाइल या मेरे गम, मेरी बीमारियाँ, इनका हल तेरे पास है, तो ख़ुद ही हमारे लिए ठीक कर दे। अब कई साल तक यूसुफ पड़े रहे, लेकिन अब वक्त आ गया। और वो क्या कि अल्लाह ने उसी मुल्क के फिर बादशाह को ख्वाब दिखाया। हिकमत है, पहले जाते बाहर कैद से तो ये होता हाँ इन्होंने सिफारिश किए तो आए हैं, लेकिन आप देखिए सब्र से पड़े रहे, अब बादशाह ख़ुद बुलवाएगा। ये है सब्र के रास्ते। वक़ाल अल मलिकु, और बादशाह ने एक रोज़ कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गायें जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालियाँ हरी हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो परेशान कुन ख्वाब हैं, हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। आमतौर पे जिसने ख्वाब देखा होता है उसको तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, अब इसकी कोई ज़रूर बात होगी, लेकिन लोग जान छुड़ाने के लिए इस तरह कह देते हैं। लेकिन उसको लगा हुआ था, उसी वक्त में वो ख्याल आ गया। वकाल अल्लज़ी नजा मिन्हुमा, इन दो कैदियों में से जो शख्स बच गया था, उसे एक मुद्दत दराज के बाद ये बात याद आई। इसने कहा, मैं आप हजरात को इस ख्वाब की ताबीर बताता हूँ, मुझे ज़रा कैद खाने में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास भेज दीजिए। ऐसा होता है ना, भूली हुई बात याद आ जाती है उसको, अरे हाँ मेरा भी तो उसने ख्वाब बताया था और वो ठीक था, तो चलो बादशाह का भी ख्वाब पूछते हैं। खैर, बादशाह ने इसको भेजा। अब जाके ना सलाम, ना दुआ, ना माजरत, ना शर्मिंदगी जी के मैं भूल गया था, बल्कि अपने काम पे काम रखा। यूसुफ़ वे यूहसिद्दीक अफ्तीना फ़ी सभी बकरात इन सीमान, इसने जाकर कहा, यूसुफ है सरापे रास्ती यानी है सच्चे यूसुफ, मुझे इस ख्वाब का मतलब बताओ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 बालियाँ हरी हैं और 7 सूखी हैं। शायद के मैं इन लोगों के पास वापस जाऊँ और शायद के वो जान लें। इससे पता चलता है कि ख्वाब मनोअन बयान करना चाहिए। ये आयतें देखिए बिल्कुल दोहराई गई हैं, जो ख्वाब उस बादशाह ने अपना बयान किया, अब पूछने वाला भी वही लफ्ज़ बोल रहा है। कोशिश करनी चाहिए किसी दूसरे का ख्वाब आप ना किसी से पूछें, इल्ला ये कि यहाँ देखिए मनोअन वही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ख्वाब में लफ्ज़ों को थोड़ा सा बदल दें तो मफहूम बदल जाता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई उसको शर्मिंदा नहीं किया, अच्छा जी मेरा काम तो किया नहीं और अपना काम आया तो पड़ गए, नहीं। क़ालत अज़रऊन सब बसिनी न दअबा, यूसुफ ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम लोग खेती बाड़ी करते रहोगे, इस दौरान जो फसलें तुम काटो इनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के लिए काम आए निकाल लो, और बाकी को इसकी बालियों में ही रहने दो। फिर जब 7 बरस बहुत ज़्यादा सख्त आएंगे, इस ज़माने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो उस वक़्त के लिए जमा करोगे, अगर कुछ बचे तो बस वही जो तुमने महफूज कर लिया हो। फिर इसके बाद एक साल ऐसा आएगा जिसमें खूब बारिशें होंगी और लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस निचोड़ेंगे। ताबीर के साथ तरीका भी बता दिया, ये भी एक काबिले गौर नुक्ता है कि ये करना वो करना। ताबीर जो बताए वो बहुत समझदार इंसान होना चाहिए, और साथ ही फिर कोई अच्छा मशवरा दे सके तो वो भी दे दे। अब बादशाह को पता चला, अरे वाह, एक तरफ तो उसके अपने चमचे थे, वो कह रहे थे अदगासो अहलाम, ये तो ऐसे बिखरे हुए ख्वाब हैं, दूसरी तरफ इतनी अच्छी ताबीर है, मुतासिर हो गया, कहने लगा उनको बुला के लाओ। हज़रत यूसुफ ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। वक़ाल अल मलिकु तूनी बिही, बादशाह ने इसे कहा मैं इसको मेरे पास लाओ। बस जब बादशाह का भेजा हुआ यूसुफ के पास पहुँचा तो इसने कहा कि अपने रब के पास वापस जाओ, रब का लफ्ज़ यहाँ बादशाह के लिए आ रहा है, इससे पूछ कर आप बताओ कि इन औरतों का क्या मामला है कि जिन्होंने अपने हाथों को काट लिया था, मेरा रब तो इनकी मक्कारी से वाकिफ़ है। यहाँ फिर नोट कीजिए कि शर्मिंदगी नहीं दी उनको कि इन्होंने मेरे पे डोरे डाले, बल्कि उस बात का तस्करा किया जो कि उसका नतीजा था। कुल नहाशलिल्लाहि मालिम नफीहि मिन सू, इसको हाईलाइट कर लें बड़ा बड़ा। बादशाह ने जब औरतों से पूछा बताओ भाई क्या हुआ, हाँ तुम्हारा क्या मामला है, क्या तुमने उस वक्त यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी, तो सब ने यक जुबान होकर कहा हाशलिल्लाह, हमने तो उसमें बदी का कोई शायबा तक न पाया। अजीज़ मिस्र की बीवी बोल उठी कि अब हक खुल गया, वो मैं ही थी जो इसको फिसलाने की कोशिश कर रही थी, बेशक वो सच्चा था। अल्लाह अकबर, ये वक्त ज़रूर आता है, वल्लाह ही ये वक्त ज़रूर आता है, अगर आप अल्लाह पे तकिया करके, अल्लाह पे भरोसा करके सब्र से जमे रहें। ज़िंदगी में बहुत सारे इल्ज़ाम लगेंगे, बहुत सारी गलत फहमियाँ होंगी, लोग आपके ख़िलाफ़ दूसरों को कर देंगे, मिसअंडरस्टूड करेंगे लोग आपको, लेकिन अगर वह मैयत तकीवा यसबिर, ये सबक है इस पूरी सूरत का, सब्र और तकवा। हालात पे शिकवा नहीं करना, रोना नहीं धोना नहीं। वही जो कल अपने शोहर को कह रही थी कि ये तुम्हारी बीवी पे डोरे डाल रहा था, आज कह रही है कि हस हसल हक का वाना रावतु अन नफसी वन्नहु लमिनस सादिकीन। और इस तरह यूसुफ बेगुनाह हुए। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर मैं यूसुफ की जगह होता तो मैं जल्दी से बुलाने वाले के साथ आता, लेकिन यूसुफ का सब्र देखिए कि बेगुनाही साबित हुई तो निकलेंगे। क्यों? इसलिए कि आगे इनको दीन का काम करना था, और दीन का काम करने वालों को अपना दामन बहुत बचा के रखना चाहिए, क्योंकि फिर छोटी से छोटी बात हाईलाइट होके दिखती है, और किरदार पे धब्बे जब होते हैं तो लोग उस दीन को भी छोड़ देते हैं और उस दीन वाले को भी छोड़ देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ यूसुफ को इस मुश्किल मरहले से गुजारा ताकि बेगुनाह होकर निकले, वरना लोगों ने कहना था वो यूसुफ, हाँ जो कैदी था, जो जुर्म के अंदर शिकार था। कानी जालिकली यालमान नीला मखुन हुबिल गईब। यूसुफ कहते हैं ये सारा कुछ मैंने इसलिए किया कि ये अजीज़ मिस्र ये जान ले कि मैंने दर पर्दा उसकी ख़यानत नहीं की, और बेशक अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों के मकर को पसंद नहीं करता, अल्लाह को वो अच्छे नहीं लगते। तो आगे फिर किस्सा चलेगा, लेकिन बात यह है कि हम देखें कि हमारे अंदर कितना सब्र और तकवा है। हालात के पेचो खम जितने आते हैं अल्लाह की तरफ से आते हैं, हालात चाहे लोगों की वजह से ख़राब हों, लेकिन हमारा अपना अल्लाह ताला के साथ मामला ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे मामलात में सुझा दे। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।